से यहां से चलो।
तुमने बताया नहीं कहाँ चलना है? मेरा रेस्टोरेंट कैसा रहेगा?
मुझे भूख नहीं है।
तो कल रात के खाने का क्यों कह रही थी?
यही साइड पे रोक दो प्लीज।
इतनी जल्दी पशमान हो गई?
नहीं, खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा।
क्यों, कुछ हुआ है क्या?
नहीं, मुझे तुमसे बात करना है।
इत्तेफाक से मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। जानती हो कब से इस मौके के इंतजार में था? मेरी उम्मीदों का आसमान रोशन और चमकदार और जगमगा रहा है।
ईरज,
तुम कौन हो जिसे मैं इतने प्यार से अपना नाम बताता हूँ? घर की चाबी तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम्हारे साथ खुशियों के लम्हात बांटता हूँ, तुम्हारे पास बैठता हूँ और तुम...
ईरज
जी, बंदा हाजिर है।
बड़े अरसे से मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन लेकिन आज रात नहीं। तुम्हें आज रात इसलिए बुलाया है कि...
जानता हूं।
जानते हो?
हाँ, इसकी वजह बेकरारी हो सकती है, कुछ और है क्या?
ईरज, जिंदगी में एक बार इसे ही संजीदा हो जाओ, शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो।
मैं समझा नहीं।
बस पूछो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हादसात पेश आए हैं कि जिनकी वजह से मैंने अपने ताल्लुकात के बारे में बहुत सोचा। ईरज, मैंने खुद को तुम्हारी जगह रख कर सोचा है। अब समझी हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी ख्वाहिशों और जरूरतों पर तवज्जो नहीं दी, हत्ता तुमसे बात भी नहीं की। ईरज, तुम्हें नहीं बताया कि तुमने भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। तुमने भी मुश्तरका जिंदगी में कभी मुझे नहीं देखा, कभी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, कभी नहीं पूछा मेरे लिए क्या अहम है, कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे काम मुझे मुसर्रत देते ही थकाते हैं। हत्ता मेरी खुशी के लिए भी अकेले खुद ही फैसले करते रहे। तुमने मुझे महदूद कर रखा था ईरज, मुझे अपने दोस्तों से, अपने जॉब से, अपनी फैमिली से दूर कर दिया। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि मैं कोई और फर्द हूं। मैं तुम्हें चाहती थी ईरज, लेकिन अपने काम, अपनी फैमिली और अपनी मामूली जिंदगी के साथ तुम्हें चाहती थी, यकीन करो। लेकिन तुमने ये सारी चीजें मुझसे छीन ली। मैं कभी भी इन चीजों के बारे में तुमसे बात ना कर सकी, कभी भी। और बस एक मखरूर और जिद्दी इंसान में तब्दील हो गई, जिसको सिर्फ हर चीज से मुखालिफत करना आता है। हर धर्म हो गई मैं, ऐसा इंसान जो हर वक्त ना कहता।
मैं हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता था, ये सारे काम इसीलिए।
क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि खुश हूं कि नहीं? कभी तुमने सोचा कि सारा दिन जब मैं घर में बंद होती थी?
मैं, हम दोबारा सिफर से शुरुआत कर सकते हैं।
झूठ के साथ?
मैं वादा करता हूं, जो तुम चाहती हो ऐसे ही होगा। हम इसी हफ्ते के एंड में शादी कर लेते हैं, हनीमून पर जाते हैं, मैं कुछ अच्छे टूर जानता हूं, फिर अपने घर वापस आ जाएंगे। नहीं, बल्कि एक बड़े से घर में जाएंगे, और इससे बेहतर है, एक पेंट हाउस होगा, हमारा पेंट हाउस।
नहीं हो सकता ईरज, देख रहे हो ना, हत्ता जब बात भी करते हो तो वही रच होते हो और मैं भी वही आतिफ।
अच्छा आतिफा, मुझे अभी आदत नहीं हुई है। अगर मैं वादा करूं कि
मुझे
हम
अपने घर पहुंचा दो ईरज, प्लीज। उन तमाम अच्छी यादों की खातिर जो हमने एक साथ गुजारे हैं, इस फासले को बाकी रहने दो प्लीज।
आतिफा,
अगर हम मोहब्बत को पहचानते हैं तो इसे उन लोगों के सुकून में ढूंढे जिन्हें हम प्यार करते हैं, हत्ता अगर वो हमसे दूर ही क्यों ना हो। हत्ता,
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आतिफा,
क्यों नहीं रह सकते हो? रहना भी चाहिए। अगर मेरा सुकून तुम्हारे लिए अहम है तो
क्या तुम वाकई मेरे साथ सुकून का एहसास नहीं करती?
मुझे घर पहुंचा दो प्लीज। यहीं पे रोक दो। शुक्रिया ईरज तमाम बातों के लिए। खुदा हाफिज। मेरी दुआ है कि तुम जहां भी रहो खुश और कामयाब रहो। अब मैं क्या कहूं?
आतिफा बेगम, मैं जानता हूं कि मैं कहना चाहता हूं कि ना जाए प्लीज। मेरी मुझसे शादी करेंगी? क्या हुआ?
वहाँ वो असल में बहुत अचानक था।
हाँ शायद, लेकिन करोगी ना?
क्या
मुझसे शादी करोगी ना?
तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि ना कह दो।
ऐसे में तो मैं गम से मर जाऊंगा।
खुदा ना करे। माफ कीजिएगा, फिलहाल इसको जेब में रख सकते हैं?
क्यों?
मोहम्मद ने देख लिया तो बहुत तंग करेगा।
तो कबूल कर लिया।
सच में? और तुम जानते हो मुझे कितना ज्यादा काम है?
अगर कहूँ कि छोटा सा काम है तो फिर भी जाओगी?
डिपेंड करता है कि तुम्हारा छोटा सा काम क्या है। रुक जाऊं?
मुझे नहीं मालूम, रुकना है या जाना है।
अच्छा तो फिर ठीक है। हाँ बस जल्दी से मंगवाओ क्योंकि मुझे फौरन वापस जाना है।
शादी की सालगिरह मुबारक आतिफा। मैं बहुत खुश हूं, यकीन करो। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर बेकार है।
बहरोज रुको,
मैं नहीं समझता था कि दोबारा आप लोगों को देख सकूंगा। मैडम कमाली ने बताया कि टेस्ट देने में आपने बहुत मदद की है, मैं आपका
बात मेरे भाई। आतिफा सिर्फ मदद के लिए यहाँ नहीं है।
मैं समझा नहीं।
आतिफा को कुछ कागजात मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि शायद वो तुम्हारी गुमशुदा बहन हो।
आतिफा, आतिफा रुको, मुझे यकीन नहीं आ रहा है।
कुछ नहीं बोलो फुलाद, प्लीज।
तो फिर
माफ कीजिएगा, मैंने देर तो नहीं की। मर्जबान साहब, ये लैला साहिबा हैं, आपकी मुमकिना बहन, और ये पुला साहब। तो आखिरकार समझ गए, ओ अतफरिया कहाँ जाना है?
बाहर की कॉरिडोर में। मैडम कमाली, जनाब मर्जबान को ले जाइए प्लीज।
लेकिन मैं
जाओ फुलाद, प्लीज जाओ।
कभी कभी जमाने के खेलों पर बहुत हैरत होती है। जब से मैंने होश संभाला है, जी चाहता था कि अपने असली माँ बाप को ढूंढ सकूं, पहचान सकूं, समझ सकूं कि क्यों। अब जब ऐसा हो चुका है तो समझ नहीं आता कि क्या करूं।
बिल्कुल मेरी तरह, फर्क सिर्फ यह है कि तुम कम से कम ये तो जानती थी कि वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है।
अभी तो कुछ साबित नहीं हुआ है मेरी जान। यकीन रखो, इस दुनिया में कोई भी चीज बला सबब नहीं है। मेरी माँ के बकौल, दरख्त से जो भी पत्ता गिरता है उसमें एक हिकमत होती है। सिर्फ हम लोगों का मसला ये है कि हम इतने साबिर नहीं हैं, इतने साबिर नहीं कि हर वाकये की हिकमत को जान सकें।
हिकमत? इतनी मुसीबतों के पीछे क्या हिकमत हो सकती है?
मुसीबत क्यों, इतने सालों के बाद तुमने एक माँ को अपने बच्चों से मिलाया, एक बिखरे हुए खानदान को नए सिरे से जोड़ा, ये परवरदिगार की हिकमत नहीं है क्या? जानती हो मैं किस बात पर खुश हूँ? मेडिकल टेस्ट का नतीजा जो भी निकले, तुम मेरी बहन हो। अगर बहन निकली तो बहन ही हो, और अगर नहीं भी निकली तो पोलाद के साथ शादी के बाद मेरी बहन बन जाओगी।
अब तुम्हारा क्या इरादा है?
मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या करती?
बहुत सख्त सवाल है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ?
समझ नहीं आ रही गुलचेरा। पता है, ईरज का चेहरा याद करती हूँ तो उसकी निगाहों में अजीब चीज थी, जैसे पहली दफा बात को समझ रहा हूं। मैं मुसलसल खुद को कोस रही हूं कि इतने अरसे उसके साथ बात क्यों नहीं की, उसको क्यों इतनी अजियत दी, क्यों छोड़ा कि वो मुझे अजियत दे, क्यों कोशिश नहीं की कि हत्ता एक लम्हे ही के लिए सही उसे समझ सकूं। क्योंकि इस तमाम अरसे में अपनी असारत में थी, मैं अपने खोल में थी, उसे
जो भी बातें थी वो सब गुजर गई हैं। इन बातों का आप खुद को अजियत देने के अलावा और कोई फायदा नहीं है। ये बताओ, पुलाव की कोई खबर है?
नहीं, मेडिकल टेस्ट के नतीजे आने तक उससे नहीं मिलना चाह रही। गुलचेहरा, मुसलसल दुआ कर रही हूं कि ये दिन जल्दी गुजर जाएं।
क्या ख्याल है, चलो कहीं सैर पर निकलते हैं। अति आंटी और रोशन अम्मी को भी साथ ले चलते हैं।
अरे नहीं, शुक्रिया। यही जो तुम यहां आई हो तो मुझ पे बड़ा एहसान किया है।
असल में मैं आज यूं ही बिलावजह यहां पर नहीं आई हूं।
क्या मतलब है तुम्हारा?
मेरे आने की एक और वजह भी है।
मोहम्मद है?
नहीं यार, बेचारा मोहम्मद। किस्सा यह है कि मैं आज सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से यहां नहीं आई हूं, एक वकील की हैसियत से आई हूं।
तुम्हारे मुवक्किल कौन है?
एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि मेरा नाम लेना भी गवारा नहीं करेगा। तुम इसे जानती हो?
मैं समझी नहीं, तुम किसके बारे में बात कर रही हो?
जनाब इरज अशराक, तुम्हारा साबिका आइडियल शौहर।
गुलचेहरा छोड़ो, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं।
यकीन करो, सच कह रही हूँ। उसने खुद ही मुझे फोन किया है, मैं उसके पास गई थी। लगता है रेस्टोरेंट और अपार्टमेंट बेच के नकद रकम में तब्दील किया है और मुल्क से बाहर जाना चाहता है। वकील बनाया कि तुम्हारे मेहर के अपार्टमेंट का आधा हिस्सा और वो ज्वेलरी जो तुमने उसे बख्श दी थी तुम्हें लौटा दो। क्या हुआ? हमदर्द आतिफा चली गई और जिद्दी आतिफा वापस आ गई। हाँ
नहीं, मुझे ईरज से कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन तुम्हें लेना होगा, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि अब इरज इशराक आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो चुका है। और अगर तुम नहीं लोगी तो मेरी जान, मैं सारी जायदाद और दौलत खुद ही ले लूंगी।
सच कह रही हो, मुझे ले लेना चाहिए, क्यों ना लूं? इस तरह से किसी गरीब इलाके में ईरज के अपने नाम से कोई हेल्थ सेंटर बना सकती हूँ।
पागल, मुझे याद रहे कि जब मरो तो वसीयत करो कि तुम्हें एक पैसा भी ना मिले। अच्छा, खुदा की नेक बंदी, ये बताओ कि मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा?
10 दिन बाद।
मुझे उससे बात करनी है।
नहीं हो सकता, तुम खुद भी जानते हो।
सिर्फ 10 मिनट।
नहीं मानेगी, तुम उसे खूब जानते हो, तुमसे ज्यादा जिद्दी है। कहाँ जा रहे हो?
नीचे जाके जरा चहलकदमी करना चाहता हूं।
पुलाद,
अस्सलाम वालेकुम, मैं लेला हूँ, लेला गुदर्जी। तुम्हारा नंबर मैडम कमाली से लिया है।
गुदर्जी साहिबा, मैं
जानती हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तक कई बार फोन कर चुकी हूँ, अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप उठा क्यों नहीं।
माफ कीजिएगा लेला साहिबा,
अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जानती हूँ कि आप भी बहुत मुश्किल नफसियाती हालात से गुजर रहे हैं। सुना है कि आपकी दादी फोत हो गई है, अफसोस हुआ। लेकिन मुझे भी हक दें, मुझे भी जानना है और उन लोगों को जो मेरी फैमिली हो सकते हैं पहचानना है। लगता है आपको एहसास ही नहीं है। आप बताएं मैं क्या कह रहा हूँ, आप शायद मेरे भाई हों।
लैला साहिबा, मैडम गुदर्जी, मैं आपका भाई नहीं हूँ।
क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट आ गई है?
नहीं, आजकल में आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि मैं पुलाद नहीं हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। पुलाद चहलकदमी करने गया है, मैंने देखा कि फोन बार बार बज रहा है, इसीलिए उठा लिया।
मैं माजरा चाहती हूँ।
लैला साहब, आप नाराज़ हो गई? कसम से मैं नहीं जानता था कि आप हैं, मैं अपना तारुफ करवाना चाह रहा था। हेलो हेलो, कट गया?
सुन रही हूँ।
हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, आपका अपना कसूर था क्योंकि मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। माशाल्लाह एक ही सांस में बोली जा रही थी आप। हेलो हेलो, कट गया?
नहीं,
मैं पुलाद से कह दूंगा, जरूर आपको फोन कर देगा। खुदा हाफिज।
शुक्रिया, मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमाली साहिबा, क्या खैर खबर?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आतिफा फरजाम हूँ, ज़रा लेबॉर्टरी का नंबर मिलाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफा फरजाम हूँ, मैं उस मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट। जी, सच में बहुत शुक्रिया।
हेलो। वालेकुम सलाम बेटा, इंशाल्लाह अच्छी खबरें लाए होगे। हाँ, क्यों नहीं, कल ही आ जाऊंगी।
कभी कभी जिंदगी में अचानक समझ जाते हो कि तुम गलती पर थे। सालों साल लड़े लेकिन बेसूद, इससे बदतर लड़े और ये भी ना जाने कि इतने साल तुम्हारा दुश्मन खुद तुम खुद ही थे। फिर वो मरहला आता है कि पता चलता है अपनी जिंदगी हार बैठे हो, कैदी की तरह सामने की दीवार तकते रहते हो, ना कुछ देखा ना कुछ समझा।
तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो?
तुम्हारा क्या ख्याल है?
मेरे ख्याल में एक जाल बिछा रहे हो तुम, जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं।
तुम्हारे ख्याल में मेरे लिए इन बातों का कहना आसान था? समझते हो कि मैंने बड़ी आसानी से खुद को तुमसे मिलने पर कायल किया? अगर ऐसा समझ रहे हो तो जान लो तुम्हारा अंदाजा गलत है। कोई जाल नहीं बिछा रहा, कम से कम इस दफा।
तो मुझे यहां किस लिए खींच लाए?
क्योंकि मैंने जिस फर्द को जिंदगी में बड़ी मुश्किल से हासिल किया और आसानी से हाथ से जाने दिया, उसको तुम बड़ी आसानी से हासिल कर रहे हो। बाज लोग बीज की तरह होते हैं, समझ नहीं आती कि कब लेकिन इंसान की जिंदगी में जड़ें पकड़ लेते हैं, उगाते हैं और अचानक देखते देखते तुम्हारी जिंदगी का बयाबान जंगल में बदल जाता है। अहम नहीं है कि वो माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, बीवी हो, अहम यह है कि तुम्हें उनकी आदत ना हो जाए और ये ना समझने लगो कि ये तुम्हारे हैं। गफलत करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल जाओगे और ये समझने लगोगे कि ये तमाम रोशनी इब्तिदा से ही तुम्हारी थी। मगरूर हो जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता खुद को तबाह करने लगोगे।
तुम मुझे नसीहत कर रहे हो?
मैं? क्या मेरी जिंदगी उस आदमी की मानिंद है जो दूसरों को नसीहत कर सके? गलत मत समझना, ये भी ना समझना कि तुम्हारे साथ हमदर्दी है या मुझे तुमसे मोहब्बत है। अगर मैं ऐसा दावा करूं तो भी ये जानता हूं कि तुम बेवकूफ नहीं हो।
तो फिर
आतिफा, उसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुसीबतें झेली हैं, अपने काम की मुश्किलात, मेरी परेशानियाँ, अपनी माँ की हालत, फरजाम, वो थक गई है।
तुम ये जानते थे फिर भी उसे तंग करते रहे?
मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ, नहीं चाहता कि वो दोबारा अजाब झेले। मैंने उसे बहुत तंग किया है, बहुत ज्यादा, लेकिन अब आतिफा के सुकून के लिए हर काम करने को तैयार हूं। तुम समझ रहे हो ना?
हैरत हो रही है। अगर तुम उसकी हालत को समझते थे तो
कोशिश की मैंने, लेकिन देर हो चुकी थी। बाज हुदूद हुरमतें जब पामाल हो जाती हैं तो उनका इजाला किसी भी तरह से मुमकिन नहीं हो सकता। शायद मुझे इसरार नहीं करना चाहिए था। मैंने उस रिश्ते के लिए एक तरह के फरजाम को मजबूर कर दिया था। ये काम इब्तिदा से ही गलत था।
समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ।
हमारे रास्ते अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वो समझती है कि मैं हमेशा के लिए ईरान से जा रहा हूँ। हम और तुम भी आखिरी दफ़ा एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी मेरा इस फैमिली से कोई मतलब नहीं रह गया। किसी पढ़ी गई किताब के पलटाए हुए वर्क की तरह मुझे कोई हक हासिल नहीं है।
आ गए, खुश आमदीद, आइए। मेरे खुदा, जैसे जैसे अपनी जवानी देख रही हूँ, मेरी जवान। आतिफा बीबी, मेहमान आए।
इस टाइम कौन है?
पता नहीं कौन है, खातून ने कह रही उनको मैडम सालारी
से मिलना। अस्सलामुअलैकुम।
अरे मैडम बुजुर्ग मेहर आप है, खुदा तू ही खैर कर।
वाह मिस कमाली, बताए बगैर महफिल सजाई है आपने, तो आप तुम्हारी मालूमात मैडम जहानपुर से लेनी पड़ेगी। है
कसम से नाजली, तुम्हारे रास्ते में बिछ जाए।
बहुत खुश आमदीद मैडम बुजुर्ग मेहर, अंदर आइए।
बहुत शुक्रिया, मेरे आने का मकसद मेरा काम है। दावत में नहीं आई हूँ, फाइल की तकमील के लिए मुझे मैडम सालारी से कुछ मालूमात लेनी है।
इस वक्त मेरी माँ अभी अभी तो
जानती हूँ कि आप लोग बहुत हसास लम्हात से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे भी अपनी ड्यूटी निभानी है।
بزرگ مہر صاحبہ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، صرف اگر ایک دن
اتفاق سے میں پوری طرح سمجھ رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ کیا کر رہی ہوں۔
میڈم بزرگ مہر،
تم ابھی اپنے گھر جاؤ، بعد میں میں تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گی۔
نازلی تباہ ہو گئی، نازلی بے روزگار ہو گئی۔
میڈم بزرگ مہر،
کوئی بات نہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، فرمائیے۔
لیکن امی جان آج
رات، کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں،
مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، شاید میرے سوالات آپ کو پسند نہ آئیں۔
سن رہی ہوں میری پیاری بیٹی۔
پہلے یتیم خانے میں بچیوں کو بھیجنے کی تاریخ اور وجوہات سے شروع کرتے ہیں۔
جس تاریخ کو میری بچیاں مجھ سے چھینی گئیں، وہ میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، لیکن ان کو یتیم خانے بھیجنے کی تاریخ میں نہیں جانتی، کیونکہ میرا اس کام میں،
یعنی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے خود بچوں کو یتیم خانے کے حوالے نہیں کیا؟
یہ دعویٰ نہیں، حقیقت ہے۔
کسی اور کو یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا؟
یہ بچیاں میری زندگی کی سب سے عزیز اور قیمتی چیز ہے، ایک ماں کیوں اپنے،
تو ان سالوں میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا؟
اقدام کیوں نہیں، اقدام کیا،
کب اور کہاں؟
تمہارے کتنے بچے ہیں میری بیٹی؟
جی ہاں، لیکن اس کا ہماری بحث سے کیا تعلق ہے؟
کتنے؟
ایک بیٹی ہے۔
پہلی بیٹی انسان کا سہارا ہوتی ہے، میری بڑی بیٹی کا نام مہدوخت تھا، بہت حساس اور مہربان تھی، بہت ذہین۔
لیکن ان باتوں کا میرے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یقین کرو میں قصوروار نہیں تھی، میں نے تم لوگوں کو ڈھونڈنے میں اپنی آنکھیں گنوا دی۔
میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟
میری جان، میں نے پہلے لمحے میں ہی تمہاری نگاہ سے تمہیں پہچان لیا تھا، جانتی ہوں میں کتنے سالوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہوں، جانتی ہو؟
آپ بات بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
میری بیٹی، میری جان،
آپ کہاں تھی امی جب ہمیں لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ اب آپ ہمیں نہیں چاہتی؟ آپ کہاں تھی؟
سب جھوٹ، سب جھوٹ تھا، جھوٹ۔
اس تمام عرصے میں پرورش گاہ کی کھڑکی پر کھڑی ہو کر آپ کے آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی، سوچتی تھی کہ آپ نے ہمیں بھلا دیا ہے، میں بیمار ہو گئی، کئی فیملیاں مجھے لے گئی اور واپس بھیج دیا، کہا یہ بیمار ہے، ڈپریس ہے، قسم کھائی تھی کہ کبھی آپ کو نہیں بخشوں گی، نہ آپ کو، نہ مہربانوں کو، نہ جنرل کو، لیکن جب مہربانوں کو اسپتال میں دیکھا تب میں سمجھ گئی۔
میری جان، ہماری زندگی کے بہترین سال ایک دوسرے سے دور گزرے، لیکن ہمیشہ میرے دل کے اندر سے ہمیشہ یہ صدا آتی تھی کہ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کو ڈھونڈ لوں گی، اس دن جو زیادہ دور نہیں ہے۔ اس وقت سے ہر سال اپنی नजर पूरी करती हूँ। एक दिन जो ज्यादा दूर नहीं है, सर बुलंद करती हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ कि इस तमाम इंतजार के बाद बिलाखिर ख्वाहिश को पा लिया। एक दिन जो ज्यादा दूर नहीं है, खुदा से चाहती हूँ कि बाबा यूनुस को, बहराम को और अम्मी को जो वहाँ ऊपर रहते हैं, वो बताए कि हम यहाँ दुनिया में अपनी जिंदगियाँ उनकी यादों से बसाते हैं। हम यहाँ एक दूसरे के करीब रह रहे हैं और जुदाई के हर हर पल के बदले उनकी मोहब्बतों को याद कर करके जीते हैं। बहराम, मेरा दिल चाहता है कि आप जान लें कि पुलाद ने अपने बेटे का नाम आपके नाम पर रखा है। परिदो उसी तरह से कि जो आपको पसंद था, अपनी बेटी को मेरी माँ के नाम से पुकारती है। आपको बताना चाहती हूँ कि छोटी गुलरुख को उसका हमसर मिल गया है और इतनी सख्तियों और तलखियों के बाद उन सब का वजूद मेरे दिल को सुकून बख्शता है। बहराम, मैं बहुत खुश हूँ। देख रहे हैं, हमारे बच्चे दोबारा लौट आए हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहते थे कि दुनिया की सारी बुराइयां मिलकर भी मोहब्बत को नहीं हरा सकती। बहराम, आपकी याद बहुत सता रही है। अब भी जब सुबह के वक्त सहरा में घास की खुशबू फैलती है ना, जब समंदर की मौजें साहिल की रेतों से अटकलियां करती हैं, जब सूरज की शुहाएं बाहर नारंज की कलियों को लुभाती हैं, तो मैं आपको याद करती हूँ। जानती हूँ कि एक दिन एक खूबसूरत दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में कि जिसमें बुराइयों और नफरतों का कोई वजूद नहीं होगा, फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। एक दिन आएगा कि एक दूसरे के साथ अपने बच्चों और नवासों और पोतों के लिए दुआ करेंगे और वहाँ ऊपर से गवाही देंगे कि जो चीज़ हमेशा इंसानों को जिंदा रखती है वो उम्मीद है।